दिन भर 28 जून दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। G20 देशों की जापान में बैठक, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में दिखी गर्मजोशी। ब्रिक्स नेताओं से भी मिले मोदी, उठाया आतंकवाद का मुद्दा।
आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
और सबसे लंबे वक्त तक RSS के सर संघचालक रहे गुरु गोलवलकर की बात विवेचना में रेहान फजल के साथ।
उन्होंने राजनीति को निम्न समझा, वो महाभारत का एक श्लोक है, वो जो राजनीति है, जो गवर्नेंस है, वो वैश्याओं का धर्म है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार भूमिका राय से। लोकसभा में आज भारी हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पारित हो गया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले परिवारों को आरक्षण दिया जाना है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन का समय 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस के विरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे।
जम्मू और कश्मीर में के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसंबर 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई 2019 से 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है। ये दरमियान में आने वाले कुछ, जैसे रमजान आया, अभी अमरनाथ यात्रा आएगी, ये सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने भी निर्णय किया है कि इस साल में बाद में वो चुनाव कराने का फैसला करते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शब्द। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि कुछ देशों ने अपने व्यापारिक हितों को संरक्षण देने के लिए जो कड़े कदम उठाए हैं, उससे पूरी दुनिया के कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। जापान के ओसाका शहर में G20 सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये बात कही। सम्मेलन में शिरकत कर रहे BBC संवाददाता के मुताबिक, शी जिनपिंग के ये शब्द साफ तौर पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए थे, जिन्होंने चीन पर फ्री ट्रेड सिस्टम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। अब सभी की निगाहें शनिवार को ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर है। पिछले महीने दोनों के बीच व्यापार को लेकर द्विपक्षीय वार्ता असफल होने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। इस वार्ता से चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के थमने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तुर्की की सेना का कहना है कि उत्तरी सीरिया में उसके सैनिकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद समर्थक बलों पर हमला किया है। तुर्की ने सैनिकों का कहना है कि वे गुरुवार को उनके ऊपर की गई गोलाबारी का जवाब दे रहे थे, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई थी और कुछ घायल हो गए थे। तुर्की की सेना सीरियाई सरकार विरोधी लड़ाकों का समर्थन करती है। इदलिब प्रांत में तुर्की ने कई सारी निगरानी चौकियां बनाई हैं। शुरू में तुर्की की सेना अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत युद्धरत पक्षों को रोकने के लिए यहां आई थी। पश्चिमी यूरोप में गर्मी के कारण कई लोगों के मौत की खबर है। हीटवेव के कारण फ्रांस में शुक्रवार को उच्चतम तापमान का रिकॉर्ड टूट सकता है। साल 2003 में यहां 44 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनके लिए इतना तापमान जानलेवा साबित हो रहा है। पेरिस की गलियों में गुजर बसर कर रही क्रिस्टीन ने बताया कि उन्हें सहायता की सख्त जरूरत है। मैं बहुत मुश्किल हालात में रहती हूँ। कभी सीढ़ियों पर सोती हूँ तो कभी कार पार्किंग में। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में सांस लेना पड़ रहा है। बेघर हो जाने के कारण सड़क पर जीना बहुत मुश्किल है। इससे पहले कि हमारी जान चली जाए, हमें मदद चाहिए। ये थे पेरिस की एक बेघर महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी आज पाकिस्तान के लाहौर शहर पहुंचे हैं, जहां वो पाकिस्तान के साथ सीमा पार व्यापार पर बैठकें करेंगे। पिछले 3 सालों में अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा के दौरान गुरुवार को उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा था कि अफगान नेता तालिबान चरमपंथियों को सीधी वार्ता करने के लिए राजी करवाने में मदद चाहते हैं। शनिवार को तालिबान और अमेरिका के प्रतिनिधि दोहा में 7वें दौर की शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि ये वार्ता अहम दौर में पहुंच गई है। BBC समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। दुनिया के 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के समूह G20 का सालाना सम्मेलन जापान के ओसाका में चल रहा है। दिन भर में सबसे पहले बात इसी सम्मेलन की। G20 की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि इसमें शामिल देशों से ही दुनिया का 85% GDP आता है और इन देशों में दुनिया की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा रहता है। समूह की सालाना बैठक में सभी देश सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण, ईरान और वैश्विक व्यापार समेत कई मुद्दों पर मतभेद भी दिख रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगाह किया है कि कुछ देश जिस तरह संरक्षणवादी कदम उठा रहे हैं, उससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था का क्रम बिगड़ सकता है। सम्मेलन में मौजूद बीबीसी संवाददाता की राय है कि चीन के राष्ट्रपति का इशारा अमरीका की ओर है। अमरीका और चीन के बीच ट्रेड वार जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की कल मुलाकात होनी है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के इतर मोदी ने आज ट्रंप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें रक्षा, सुरक्षा और व्यापार के मुद्दे शामिल रहे। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सुनिए दोनों नेताओं ने क्या कहा।
भारत और अमेरिका के संबंध एक दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम कमिटेड हैं और उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे।
Well, thank you very much, Mr. Prime Minister. We've become great friends and our countries have never been...
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश पहले कभी इतने करीब नहीं रहे। हम मिलिट्री समेत कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। हम व्यापार के क्षेत्र में भी मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने आम चुनाव में मिली जीत को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। मोदी ने ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के नेताओं से भी मुलाकात की। मोदी ने ऊर्जा सहयोग और WTO को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद को खत्म करने में सहयोग की भी अपील की।
आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से भी मिले। इस मीटिंग में भी ट्रंप मौजूद थे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संयुक्त बैठक भी की। वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल से भी मिले। G20 सम्मेलन पर टोक्यो के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मुकेश विलियम्स भी करीबी निगाह बनाए हुए हैं। मैंने कुछ वक्त पहले प्रोफेसर विलियम्स से बात की।
देखिए, ये टैरिफ का जो मुद्दा है ये बहुत ही संगीन मुद्दा है और जो जापान में है लोग इसको हिंदुस्तान और अमेरिका के जरिए नहीं देख रहे हैं, इसको अमेरिका और चीन के जरिए देख रहे हैं। अगर अमेरिका जो है चीन की तरफ थोड़ा सा नरमी दिखाएगा तो जापान जो है उसको एक सांत्वना मिलेगी और उसके जरिए जो है हिंदुस्तान को भी एक बढ़ोतरी मिलेगी। जो लोग देख रहे हैं बड़े प्लेयर को देख रहे हैं और वो बड़े प्लेयर जो इस वक्त हैंगे वो ट्रंप है और जिनपिंग है चाइना के। अगर देखा है तो जापान में मोदी यात्रा मीडिया या लोगों में उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जा रही है जितनी पहले मानी जा रही थी। जापान टाइम्स में जैसे आप देखिए उसमें 9वें पेज पर मोदी की चर्चा की गई है। पेज का टाइटल है इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट स्पेशल और पहला पेज जो है उसमें ट्रंप ने ले लिया है।
ट्रंप और नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात हुई है और बड़ा गर्मजोशी इस मुलाकात के दौरान दिखी। इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं?
वो सभी लोग यही देख रहे हैं क्योंकि एक शक्ति नजर आ रही है ट्रंप के जो अंदाज में और वो शक्ति सिर्फ ट्रंप की नहीं है, पूरी अमेरिका की एक थिंकिंग बदल रही है। अमेरिका नहीं चाह रहा जिस तरीके से उसने दुनिया चलाई पहले उस तरीके से चले, क्योंकि अमेरिका में भी काफी समस्याएं हैं तो मेरा ख्याल है कि जो हम चाहते हैं और जो वो चाहते हैं उसमें मिलाव अभी नहीं आ रहा है, और वो तभी आएगा जबकि चीन और अमेरिका में समझौता होगा।
नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा जापान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, रूस के प्रेसिडेंट से भी वो मिले, चीन के प्रेसिडेंट से भी मिले, बाकी नेताओं से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद क्या कुछ संकेत निकलते हुए दिख रहे हैं?
जो हमने लोगों से बात की, जापानियों से यहाँ पे और मीडिया से, लोग कुछ घबराए से हैं। पॉपुलिज्म जो है वो उनको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कट्टरवादी का जोर दिख रहा है, उनको घबराहट है कि अमेरिका में जैसे ट्रंप और हमारे देश में फंडामेंटलिज्म थोड़ा सा आया, जापान में भी आबे के जरिए ना आए। उसकी वजह ये है कि जो व्यावहारिक डेली लाइफ है उसके मुद्दे जापान में ज्यादा तेज है, जैसे कि पेंशन सिस्टम टूट रहा है। तो अब जो सबसे बड़ी बात है, जो उम्मीद है कि अगर इसके जरिए सहयोगिता देशों में हो तो प्रगति हो सकती है, मगर जो न्यूज़पेपर और जो लोगों की बातचीत से दिखाई दे रहा है उनको इंटरेस्ट इसमें जरा कम है, उनको इंटरेस्ट ज्यादा ये अलग चीजों में है, क्योंकि उनको लगता है कुछ होगा नहीं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बड़ी मीटिंग हो रही है ओसाका में, इसको आप कैसे समझते, कैसे देखते हैं? कहते जी ऐसा है, अगर इसमें उम्मीद हमारी 40% है, इतने बड़े बड़े देश मिल रहे हैं, अगर इसके अंदर सहयोगिता की बात हो, अगर इसमें मिलाव की बात हो तो चीज, क्योंकि सब मुद्दे जो हैं वो कोऑपरेशन पे बेस्ड हो रहे हैं G20 के।
कल ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर सभी की नजर होगी। ये थे प्रोफेसर मुकेश विलियम्स। रुख भारत का और बात मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की एक पुरानी तस्वीर सामने आई है। इसने उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय पर जारी विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। आकाश ने 2 दिन पहले नगर निगम के अमले पर हमला किया था, जिसके बाद से वो जेल में है। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
सीनियर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय गुस्से में दिख रहे हैं। उनके एक हाथ में जूता है और वो एक व्यक्ति के चेहरे से सटा हुआ है, इस तरह जैसे उस शख्स की जूतों से पिटाई हो रही हो। इसे लेकर 2 तरह की कहानियां सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। एक के मुताबिक ये कैलाश विजयवर्गीय की एक सीनियर पुलिस अधिकारी को पीटते वक्त की तस्वीर है। तस्वीर शेयर करते हुए लोग इसे आकाश विजयवर्गीय की कारगुजारी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लिख रहे हैं, बेटा बाप को देखकर ही सीखता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बात कुछ और है। इंदौर स्थित वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी कहते हैं, तस्वीर 90 के दशक की है, जब सीनियर विजयवर्गीय इंदौर से विधायक थे।
उस दौरान छत्रीपुरा इंदौर का एक थाना है, वहां पर टाउन इंस्पेक्टर पुलिस की पोजीशन पे मिस्टर एलसी सिलावट पोस्टेड थे। सिलावट के किसी एक्शन से कैलाश विजयवर्गीय बहुत नाराज हो गए, उन्होंने बहुत अपने गुस्से में अपने तीखे तेवर दिखाए। तो उस समय इंदौर में एडिशनल एसपी थे मिस्टर प्रमोद फलनीकर, वो जब विवाद की सूचना मिलने पर मौके पे पहुंचे तो कैलाश विजयवर्गीय ने उन्होंने अपने पांव से जूता निकाला और प्रमोद फलनीकर को वो जूता दिखाते हुए कहा कि आप अपने TI को समझा लीजिए, अन्यथा मैं उसकी इस जूते से पिटाई कर दूंगा।
कांग्रेस राज्य इकाई के प्रवक्ता के मिश्रा पूछते हैं,
जूते से समझाते हैं क्या किसी को? यदि जूते से आदमी समझता है तो ये सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का।
इस बीच बीजेपी ने शहर में 2 दिनों पहले नगर निगम कर्मियों की बल्ले से पिटाई करने वाले पार्टी विधायक आकाश विजयवर्गीय के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया और शहर में जगह जगह सैल्यूट आकाश जी के पोस्टर लगे नजर आए। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य विजय मालू ने कहा कि ये प्रशासन के राजनीतिकरण और कांग्रेसीकरण के खिलाफ प्रदर्शन था।
प्रशासन तो अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति तो नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी होती है जनप्रतिनिधि की, क्योंकि उसको चुनाव में जाना पड़ता है, उसे जनता से सीधा रूबरू होना पड़ता है, जनता से सीधा संवाद करना पड़ता है। उन्होंने कांग्रेस के इशारों पर किस तरह से उस मकान को जल्दी से ध्वस्त किया जाए इसलिए लगे थे, और वो हमारे विधायक के टेरिटरी में था और वहीं पर उन जनता ने, वहाँ के नागरिकों ने उनसे गुहार लगाई और वो वहाँ पर पहुंचे।
बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। के मिश्रा कहते हैं कि इंदौर नगर निगम पर दशकों से बीजेपी का कब्जा है और जिस जर्जर मकान को ढहाने की कार्रवाई नगर निगम का अमला कर रहा था, उसका नोटिस तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही सर्व किया जा चुका था। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
और अब विवेचना। गुरु गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक नहीं थे, लेकिन उन्होंने संघ के संगठन और विचारधारा को विस्तार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हाल में ज्योतिर्मय शर्मा की एक किताब प्रकाशित हुई है, एमएस गोलवलकर द आरएसएस एंड इंडिया, जिसमें उनके जीवन और विचारों पर आलोचनात्मक नजर डाली गई है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं आरएसएस के सबसे अधिक समय तक सरसंचालक रहे गुरु गोलवलकर के जीवन पर।
ये अपना राष्ट्र ये कहने का साहस बड़े बड़े कहलाने वाले में नहीं, और एक मिला जुला ऐसा नया एक उसके राष्ट्र जीवन बनाने का प्रयत्न किया, जिसमें कि यहाँ का निवासी हिंदू उसका विनाश करने के उसके ऊपर आक्रमण करने वाला ऐसे जो कुछ बाकी के समाज में सब इनको समान रूप से ही जिसका अंग माना।
ये आवाज है माधव सदाशिव गोलवलकर की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार के बाद 43 सालों तक आरएसएस की अगुवाई की और उसे उथल पुथल के दौर और तमाम विवादों से निकालते हुए उस मुकाम पर पहुंचाया जहां हम आज उसे देखते हैं। 2004 में आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के जाने माने विचारक एमजी वैद्य ने लिखा था, गुरु गोलवलकर को 20वीं सदी में हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राजनीति में संघ का जो महत्व आज है उसका श्रेय गुरुजी को दिया जाना चाहिए, जिनके अथक प्रयासों के कारण ही संघ देश के कोने कोने तक पहुंच पाया। 19 फरवरी 2006 को रामटेक में जन्मे गोलवलकर की निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम सामग्री उपलब्ध है। 1929 में अपने साथी बाबूराव तेलंग को लिखे गए एक पत्र में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की एक झलक देते हुए लिखा था कि वो एक गुस्सैल पिता की एक रुष्ट संतान है और उनकी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। वो तेलंग को ये भी बताते हैं कि किस तरह बीमारी के दौरान उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था और किस तरह नागपुर दंगों के दौरान उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। हाल ही में एमएस गोलवलकर द आरएसएस एंड इंडिया पुस्तक लिखने वाले हैदराबाद विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ज्योतिर्मय शर्मा बताते हैं,
नागपुर में हाथों का इस्तेमाल किया तो लोगों ने किया। अगर आप कुछ आधारा से सहमत है तो आप कहेंगे कि रेवोल्यूशनरी था, नॉन गांधीयन रेवोल्यूशनरी था, और अगर विचारधारा से सहमत नहीं है तो उसको आप राइटर कहेंगे। तो इन सब चीजों में अब सावरकर ने तो 7 या 9 साल की उम्र में मस्जिद के ऊपर पत्थर मारे थे अपने मित्रों के साथ मिलके। मेरे हिसाब से इन सब चीजों का सिग्निफिकेंस जो है, इनका महत्व जो है थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। सबसे बड़ा जो महत्व है गोलवलकर जहां तक है वो ये है कि उन्होंने राजनीति को निम्न समझा। वो महाभारत का एक श्लोक है, वो बार बार रिपीट करते थे, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग में रिपीट करते थे, और उनके बाद भी सरसंचालक जो हैं भागवत जी तक वो उसको रिपीट करते थे कि जो राजनीति है, जो गवर्नेंस है, वो वैश्याओं का धर्म है, रणनीति वैरांगना। उनका सिग्निफिकेंस ये है कि उन्होंने आरएसएस को एक संन्यास आश्रम की छाया में ढाला और उसको पनपने दिया।
कहा जाता है कि आरएसएस के सभी सरसंचालकों में आरएसएस पर सदाशिव गोलवलकर की छाप सबसे अधिक है। संघ के हलकों में उन्हें अभी तक स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक विरासत के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख और मशहूर पत्रकार राम बहादुर राय को गोलवलकर से मिलने का कई बार मौका मिला था।
एक बार मैंने उनको पत्र भी लिखा था एक प्रोटेस्ट में, तो वो गुरुजी पत्रों के जवाब देते थे। वो मान लीजिए दौरे पर होते थे, जिसको संघ में प्रवास कहते हैं, तो लौट करके आने के बाद वो जो पहला काम करते थे नागपुर में, नागपुर महाल में संघ का वो जो कार्यालय था, तो उसमें सीढ़ियाँ चढ़ करके और अलग से सरसंघचालक का एक कमरा होता था जहाँ वो रहते थे, और डॉक्टर आबाजी थत्ते एक पेशे से डॉक्टर थे लेकिन संघ के प्रचारक हो गए थे, तो वो उनके निजी सचिव के रूप में आजीवन रहे। तो मैंने उनको दूर नज़दीक से कई बार देखा है। पहली बार मैंने उनको 1968 में देखा, और उस समय देखा जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो गई थी। दीनदयाल उपाध्याय का शव मुगल सराय स्टेशन पर रखा हुआ था। वो इलाहाबाद से और सीधे वहां गए जहां दीनदयाल उपाध्याय का पोस्टमार्टम हुआ था। बाकी लोग रोग आ रहे थे, गुरुजी अविचलित थे।
गुरु गोलवलकर के कार्यकाल का सबसे विवादित फैसला था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संघ को पूरी तरह से अलग थलग रखना। उनके इस फैसले को लेकर आरएसएस की अब तक आलोचना की जाती है, लेकिन ऐसा करने के उनके अपने कारण थे। मशहूर किताब आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट लिखने वाले नीलंजन मुखोपाध्याय कहते हैं,
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हेडगेवार जब 1930-31 में गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद जो सिविल डिसोबीडियंस का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बतौर संगठन के नहीं पार्टिसिपेट किए थे। उन्होंने अनुमति दी थी अपने काडर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में शामिल होने की, उन्होंने खुद तय किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा सिविल डिसोबीडियंस का जो कहते हैं कि उसके प्रति एंथुजियाज़म इतना था, उनको ये लगा कि अगर हम लोग इस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम लोग टोटली इररिलेवेंट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पर्सनली भी एजिटेशन में शामिल हुआ था, लेकिन मेन सिविल डिसोबीडियंस में नहीं हुआ था बल्कि जंगल सत्याग्रह में हुआ था। लेकिन उसके ज्वाइन करने के पहले उन्होंने जो सरसंघ चालक की गद्दी थी वो दूसरे किसी अपने साथी को परांजपे जी थे उनको नियुक्त करके सरसंघ चालक बना के फिर जाके वो कोर्ट अरेस्ट किए थे। तो गोलवालकर ने जो फैसला किया क्विट इंडिया मूवमेंट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं ज्वाइन करेगा, वो उसी के कंसिस्टेंट था, क्योंकि एंटी कॉलोनियलिज्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन परसूट नहीं था। वो लोग बेसिकली चाहते थे कि हिंदू समाज को स्ट्रेंथन करें ताकि वो मुसलमानों का जो इतिहास में उनके परसेप्शन में कि हिंदुओं का जो अपमान हुआ उसका वो लोग बदला ले सकें। उनको लगता था कि अगर हम हिंदू कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है ये जियोपोडाइज होगा अगर हम लोग कॉलोनियल पावर्स के किसी कारण से हम उनको अपसेट करें जिसकी वजह से वो हम पे कोई सैंक्शंस लगा दें, तो हमारा जो एक्चुअल काम है कि हिंदू समाज को स्ट्रेंथन करना, मुसलमान समाज के खिलाफ खड़ा कर पाए हम हिंदुओं को, उसमें हमारी वीकनेस हो जाएगी।
गोलवलकर की सबसे बड़ी आलोचना हुई मुसलमानों के उनके जबरदस्त विरोध के कारण। मैंने ज्योतिर्मय शर्मा से पूछा कि आखिर गोलवलकर के मुस्लिम विरोध के पीछे मूल आधार क्या था।
एक तो वो हमसे अलग है, वो जो पुराना जो है कि उनके इस्लाम का जन्म जो है वो हिंदुस्तान में नहीं हुआ। एंड दिस लैंड बिलोंग्स टू अस। अब कोई पूछे कि भाई टाइटल डीड बताइए आप इस लैंड की, तो फिर आप वो आर्यन थियोरी में चले जाएंगे कि आप भी यहाँ नहीं थे, यहाँ तो सिर्फ आदिवासी थे, आप तो सेंट्रल एशिया से आए थे। तो सावरकर का जो पितृभू मातृभू पुण्यभू वाला मामला है तो वही एक तरह से एप्लीकेबल है यहाँ भी, गोलवालकर भी उसको मानते थे। और जहाँ तक सवाल है, गोलवालकर तो जगह कहते भी हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं है कि मुसलमान जुम्मे की नमाज अदा करे, मस्जिद बनाए, एज लॉन्ग एज दे एक्नॉलेज हिंदुइज्म एज द सिविलाइजेशनल फ्रेमवर्क, अपने आप को सिविलाइजेशनली हिंदू मान। तो एक जगह कहते भी हैं कि आप भले ही अपना फर्स्ट नेम जो है मुसलमान रख लें पर सरनेम हिंदू रखें, या फर्स्ट नेम हिंदू रख के सरनेम मुसलमान रखें।
इस बात के साक्ष्य हैं कि आजादी से पहले गोलवलकर ने बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा की योजना बनाने और भड़काने की कोशिश की थी। भारत के गृह सचिव रहे और बाद में युगोस्लाविया में भारत के राजदूत रहे राजेश्वर दयाल अपनी आत्मकथा ए लाइफ ऑफ आवर टाइम में लिखते हैं,
जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था पश्चिमी रेंज के अनुभवी और सक्षम उप पुलिस महानिरीक्षक बीबीएल जेटली बहुत गोपनीय ढंग से मेरे यहाँ स्टील के दो बड़े ट्रंक लाए। उसमें राज्य के पश्चिमी जिलों में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के अकाट्य साक्ष्य थे। उन ट्रंकों में उस क्षेत्र के हर शहर और गांव के सटीक ब्लूप्रिंट थे जिनमें मुस्लिम बस्तियों और उन तक पहुंचने के रास्तों को चिन्हित किया गया था। मैंने मुख्य आरोपी श्री गोलवलकर की तत्काल गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया जो अभी भी उस क्षेत्र में थे, लेकिन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने मामले को कैबिनेट के सामने रखने का फैसला किया, लेकिन इस बीच गोलवलकर को मुखबिरी कर दी गई और वो इलाके से गायब हो गए।
लेकिन वही गोलवलकर कश्मीर के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सरदार पटेल के कहने पर महाराजा हरि सिंह से मिलने श्रीनगर जाते हैं। मशहूर पत्रकार संदीप बोमजाई लिखते हैं,
सरदार पटेल के कहने और राज्य के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन के हस्तक्षेप के बाद गोलवलकर श्रीनगर गए और 18 अक्टूबर 1947 को उन्होंने महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की। पंजाब के प्रांत प्रचारक माधवराज मुले ने लिखा है कि महाराजा ने गोलवलकर से कहा, मेरा राज्य पूरी तरह से पाकिस्तान पर निर्भर है। कश्मीर से बाहर जाने वाले सभी रास्ते रावलपिंडी और सियालकोट से गुजरते हैं। मेरा हवाई अड्डा लाहौर है, मैं भारत से किस तरह संबंध रख सकता हूँ? गोलवलकर ने उनसे कहा, आप हिंदू राजा हैं, पाकिस्तान के साथ विलय के बाद आपकी हिंदू प्रजा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सही है कि आपका भारत के साथ कोई रेल, सड़क या हवाई संपर्क नहीं है, लेकिन इसे बनाया जा सकता है। आपके और जम्मू कश्मीर के हित में अच्छा यही होगा कि आप भारत के साथ अपने राज्य का विलय कर लें।
चीन के साथ युद्ध में आरएसएस ने नागरिक प्रशासन में जिस तरह की भूमिका निभाई उससे नेहरू इतने प्रभावित हुए कि आरएसएस की एक टुकड़ी को पूरी यूनिफॉर्म और बैंड के साथ 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने दिया गया। 1965 के युद्ध में भी गोलवलकर उन चंद लोगों में से थे जिनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने परामर्श किया था। अटल बिहारी वाजपेयी उनसे इतने प्रभावित थे कि उनकी उपस्थिति में कभी कुर्सी पर न बैठकर हमेशा जमीन पर बैठते थे। गोलवलकर के देहांत के बाद भाषण देते हुए वाजपेयी ने कहा था,
मैं तो अपना श्राद्ध स्वयं करके चले गए, हमारे लिए मानो कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं होगा कुछ नहीं छोड़ा। हमारे लिए राष्ट्रभक्ति की एक महान धरोहर छोड़िए, समाज को संगठित, अनुशासित और शक्तिशाली बनाने का एक अधूरा कार्य छोड़ा है। भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का एक महान संकल्प छोड़ा है जीवन भर।
लेकिन गोलवलकर के आलोचक ऐसा नहीं मानते। लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा उन्हें नफरत का मसीहा कहते हैं। गोलवलकर हालांकि जानकार व्यक्ति थे, लेकिन उनके बारे में मशहूर था कि वो अखबार तक नहीं पढ़ते थे। संघ की विचारधारा का स्रोत सावरकर हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को विस्तार गोलवलकर ने ही दिया था।
गोलवलकर जो है एक तरह से उनका क्लोज्ड माइंड था। उनके दिमाग में जो कुछ कंक्लूजन्स आने थे, जो कुछ उनका जो थियरी थी, सोशल थियरी थी, उसके बारे में कंप्लीट फाइनलिटी आ गई थी बहुत उनके जवानी में। तो उसके बाद से उनको लगता था कि मुझे आगे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अपने विचार को रिकंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि वास्तविकता ये भी, कोई भी अगर अच्छा आदमी इंटेलेक्चुअल परसूट में लगता है तो उसको एक चीज़ से हमेशा तड़पना चाहिए, वो है सेल्फ डाउट। क्या मैं जो कह रहा हूँ क्या यही फाइनल ट्रूथ है, या हो सकता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? गोलवलकर के दिमाग में कभी ये नहीं आया था। जबकि उनके जो सक्सेसर थे बाला साहेब देवरस, उनमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि वो हमेशा अपने पोजीशंस को री एग्जामिन करते थे कि क्या मुझे इस पोजीशन से कुछ हटके चेंज करना है या आगे बढ़ना है।
इंदिरा गांधी गोलवलकर से कभी नहीं मिली। अपने पिता की तरह उन्होंने भी उनका विरोध किया, लेकिन उनकी मृत्यु पर उन्होंने कहा था, अपने व्यक्तित्व और विचारों की गहनता के कारण राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एक खास जगह थी। हालांकि हम में से बहुत से लोग उनसे सहमत नहीं थे।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितो हम।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना के संघ पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और आपको बता दें, कल इंडिया बोल में चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर। और अब चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। लोकसभा में आज भारी हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पारित हो गया है। तुर्की की सेना का कहना है कि उत्तरी सीरिया में उसके सैनिकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद समर्थक बलों पर हमला किया है। पश्चिमी यूरोप में गर्मी के कारण कई लोगों की मौत की खबर है। हीट वेव के कारण फ्रांस में शुक्रवार को उच्चतम तापमान का रिकॉर्ड टूट सकता है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।